सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं। अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् शमनानपि तद्धर्मरागिणां धर्मः सागारा
पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है, जिसमें विस्तार से श्रावक के धर्मों की, श्रावकाचार की चर्चा की गई है। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 66 पर, 66 विशेषार्थ पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर। हमने तो श्लोक भी पढ़ा था 20 नंबर का और उसका अर्थ भी देखा था। यहाँ कहते हैं दो तरह के भोग्य पुरुष होते हैं, एक जो जैन कुल में जन्मे हैं और दूसरे जो अन्य धर्मावलंबी ऐसे कुल में जन्मे हैं जिसमें विद्या और शिल्प से आजीविका नहीं होती। यानी वे ही फिर जिन रिक्शे के अधिकारी, जिनमें विद्या और शिल्प से आजीविका होती वो जिन धर्म के ने दीक्षा के योग्य नहीं, समय दर्शन तो प्राप्त कर सकते। विद्या से यहाँ आजीविका के लिए गीत आदि विशेष शास्त्र, यानी गाना बजाना वगैरह करके जो आजीविका करते ऐसी बातें की, और शिल्प से बढ़ई लुहार आदि कारुकर्म लिया गया है। इनसे आजीविका करने वालों को जिन दीक्षा का अधिकारी नहीं कहा। जो जन्म से जैन होते हैं वे तो बिना प्रयत्न के ही सम्यक्त्व व्रत आदि धारण करके धर्मात्माओं में अग्रणी बन जाते हैं, और जो मिथ्या दृष्टिकोण में जन्म लेते हैं वे आगे बतलाए क्रम के द्वारा व्रत आदि धारण करके उन्हीं के समान हो जाते हैं। अभी कुछ क्रम यहाँ बताया है उन्होंने। अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल परंपरा से आए मिथ्या धर्म को छोड़कर और विधि पूर्वक जैन मार्ग को स्वीकार करके, कौन कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनमें अपना अपना कुल परंपरा से आए हुए अलग अलग धर्म हो सकते हैं। ये तीन तो वर्ण है, ये धर्म नहीं है। तो अपने अपने जो कुल परंपरा से जो मिथ्या धर्म को छोड़कर और विधि पूर्वक जैन मार्ग को स्वीकार करके स्वाध्याय ध्यान के बल से अशुभ कर्मों का घात करते हैं, उन भोगों जीवों का अभिनंदन करते हैं। इक्कीस नंबर ऊपर श्लोक पढ़ेंगे हम। तत्वार्थम प्रतिपद्य तीर्थ कथनादाय देशव्रतम् तद्दीक्षाग्रधृता पराजित महामंत्रोस्त दुर्दैवत अंगं पौर्वमथार्थ संग्रहमधीत्याधीत शास्त्रांतर पर्वान्ते प्रतिमा समाधिमुपयन्तन्यो निहन्त्यन्हसि। इसका अर्थ हम लिखेंगे नीचे। धर्माचार्य अथवा गृहस्थाचार्य के उपदेश से जीवादिक तत्वार्थ का निश्चय करके, यानी पहले में पहले सही उपदेश मिला है उनको, तो यहाँ धर्माचार्य आचार्य उनको भी कहते हैं, अथवा गृहस्थाचार्य यानी गृहस्थ रहते हुए भी जो जिनागम का उपदेश आदि देते हैं उनको गृहस्थाचार्य भी कहते हैं। जीवादिक तत्वार्थ का निश्चय करके अष्टमूल गुण आदि एक देश व्रत को स्वीकार करे। तत्वार्थ के निश्चय में समय दर्शन उन्होंने ले लिया और फिर एक देश व्रतों का धारण करते हैं, तथा देश व्रत की दीक्षा लेने से पहले गुरुमुख से पंच नमस्कार नामक महामंत्र को ग्रहण करें। अब तक जिन मिथ्या देवों को मानता था उनका त्याग कर दे तथा 11 अंग और 14 पूर्व संबंधी उद्धार ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद अन्य मतों के शास्त्रों को पढ़े। पहले नहीं बताया, लोग ऐसा कहने वाले आपको मिले होंगे, हम सभी धर्मों का अभ्यास करेंगे फिर इसका अभ्यास करेंगे और फिर मानेंगे, तो कहते पहले में पहले इसका पूरा अभ्यास करो। उस संबंधी उद्धार ग्रंथ तथा प्रतिमास 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी की रात्रि में रात्रि प्रतिमा योग का अभ्यास करता हुआ वह पुण्यशाली व्यक्ति द्रव्य पाप और भाव पाप को नष्ट करता है। इसी का विशेषांश पढ़ने जा रहे हैं। विशेष अवतार वृत्त लाभ स्थान लाभ गणग्रह पूजाराध्य पुण्य यज्ञ ब्रह्मचर्या और उपयोगिता, ये 8 क्रियाएं जैन धर्म में दीक्षित होने वाले अजैन के लिए है। कल पूछा था ना अवतार वगैरह क्या होता है, तो ये भी बताने वाला है। इनकी गणना दीक्षान्वय क्रियाओं में की जाती है। जो जैन नहीं है, अन्य मति, कोई बौद्ध है, कोई सांख्य मति है, कोई वैदिक है। हाँ अभ्यास है, परंतु उसको मंत्र पूर्वक जिन दीक्षा दी जाती है उसको अष्टमूल आदि धारण किए जाते हैं, यानी वो प्रतिज्ञा पूर्वक उनका अंगीकार करते
हैं, मानना चाहिए।
हाँ जिसकी इच्छा है वही तो है ना, ये जबरदस्ती तो है नहीं है। किसी उनको है कि किसको देना उसको मानना चाहिए ना, तो कहते जो इंटरेस्टेड है। अभी किसी ने उपदेश सुना है, पहले तो हमने ये भी देखा था कि जो भले है मध्यस्थ है जिन धर्म के प्रति द्वेषी नहीं और सुनना चाहते उनको सुनाना, अभी उसने सुन लिया और वो चाहता है कि मैं जैन बनूं, उसके लिए बात।
देखो एक बात पाठशाला में
सिंधी
लड़का लाया था छोटा 10-12 साल का, और उसने बहुत हट किया कि मुझे कक्षा करना है,
यानी वो रेगुलर पाठशालाओं में अटेंड करता था, पहला नंबर भी आता था, बहुत होशियार है और पूरा अभ्यास है उसका जैनिज्म का,
परंतु सब बच्चों से अच्छा उत्तर दे हमारे प्रश्नों का भी।
हर इतवार को वहाँ बच्चों को बराबर ये शुद्ध कपड़े पहनकर अभिषेक वगैरह किया जाता है, वो वहाँ बच्चे करते हैं, तो उसकी भी इच्छा बहुत थी कि मैं भी अभिषेक करूं, उसकी बात बता रहे। तो उसको विधि पूर्वक ये सब जैसे अष्टमूल गुण वगैरह धारण कराए प्रतिज्ञा पूर्वक, और बाद में उसको जिसको कि जैन संस्कार करके
भोजन का त्याग भी करवाया। अभी मतलब जो कुछ नेसेसिटी बातें हैं उसे लड़के ने बहुत सहज से उसका चालक किया और वो अभी रोजाना भिक्षा करना है। अभी आस्ते आस्ते उसके माता पिता भी आ रहे हैं, बच्चे को क्या सिखाया, आलू प्याज आदि खाने का नहीं, हम क्या खाना बनाए, सबको ऐसा प्रश्न होता है, जैनों को भी होता है।
उनको उपदेश सही उपदेश देना चाहिए, आपका प्रश्न है, जो जैनी होते हुए भी मिथ्या देवताओं को मानते हैं तो उनके तो देव का सही स्वरूप समझाना चाहिए कि देव क्या है, अदेव क्या है, कुदेव क्या है, ये तो बेसिक बातें हैं। अब जो अन्य मतियों को नहीं मानते हैं, केवल तीर्थंकरों को ही मानते हैं, उनको भी वो उसको उसका स्वरूप जानकर उनके पूजा अर्चा करनी चाहिए, यानी वो तो अन्य मतियों को नहीं मानते क्योंकि अपने कुल में मानने की पद्धति नहीं है, फिर भी उनको यदि अरिहंत सिद्ध का स्वरूप मालूम नहीं है तो कहते वो तो नहीं के बराबर, यानी सबसे प्रथम सच्चे देव का स्वरूप का निर्णय ही होना चाहिए। अभी निर्णय ने वो सात तत्वों के निर्णय तक नहीं भी पहुंचे फिर भी सही क्या है गलत क्या है और ये क्यों है परीक्षा करके बराबर बुद्धि से वो समझे तभी वो कार्य हो सकता है। बस नहीं हम जैनी हैं दूसरे को नमस्कार नहीं करना ऐसा अगर कहेंगे केवल बच्चों को तो पूछो ये क्यों नहीं, वो भी भगवान है हमारे भी भगवान है, वो करते हैं हमें करने में क्यों है ऐसा।
देवी देवता के नाम ना बोलेंगे तो बैठता नहीं हो क्या, उल्टा इसलिए तुम नहीं मानते, तकलीफ आएगी तो तुम भी मानते,
ये तो ये है ना ऐसा उनका विचार।
हाँ।
तो जो सही निर्णय करने वाला है वो तकलीफ में उनको क्यों मानेगा, तकलीफ तो पाप की ओर ही आई है और मिथ्या देवताओं को मानने से और पाप करेगा, ख्याल में आती बात। तो ये यही मिथ्या मान्यता है कि कोई देवता मुझे तार देगा। अन्य मतियों के जो नहीं मानते थे तो भी क्यों मानने गए, क्योंकि किसी ने एडवाइस किया अमुक इसको वहां चले जाओ वहां मन्नत मांगो तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, वो बहुत जागृत देवता है आपका वो बीमारी दूर हो जाएगी आपको फल होगा ये ऐसा होगा वैसा। हम तो देखते हैं अभी यही चल रहा है ना दुनिया में, ऐसा ही है ये मिथ्यात्व के कारण ऐसे विचार ही जीव को नहीं सूझते, ये ऐसे ही तीव्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो जैनी हो अजैनी उसे कोई जन्म से तो कुछ बात नहीं है, परंतु ऐसा तीव्र मिथ्या तो होता है कि वो एक तो सुनने को राजी नहीं है, दूसरी बात वो सुनाएगा कोई तो भी उसके वो विचार नहीं होते, उल्टे ही विचार करता है, उसको उल्टा ही तर्क होता है, वो सही तर्क उसको बैठता ही नहीं। हमने तो इनको सुनते हुए ऐसा बोलते हुए सुना है, वो तो हमारे फ्रेंड जैसे लगते हैं। हाँ, अन्य मति के देवता है अपने, वो हमको डर लगता है उससे, ये बहुत कड़क है। यही उनका मानना है कि भौतिक सुख अन्य मति के देव देवता देते हैं, मतलब कोई किसी को नहीं दे सकता, ये बात ही उनको नहीं बैठती, क्या करे क्योंकि
हमें पहले उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अब वो सुनने को तैयार नहीं तो बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए,
फिर उनको छोड़ दो उनके होनहार पर।
हमारे कोई सगे संबंधी है इसलिए हमें लगता है कि जो बात हमें मिली है वो उनको भी मिली, लेकिन जब उनका ऐसा उपादान ही जागरूक नहीं है तो हम हट नहीं करें और उनके ऊपर द्वेष भी नहीं करें।
तो करुणा के पात्र है ना कि इतने तक आकर अभी कहाँ रुके हैं और कहाँ अटके है, यानी जैन कुल में जन्म लेकर भी जो अन्य इधर उधर भटक रहे हैं उनकी तो अभी क्या है, हम उसका तो उनको निर्णय ही नहीं है। हाँ बस हाँ भगवान है वो हाथ जोड़ दिया
सब भगवान से ये करके आए ना वो सब भगवान
क्या करे, उनको भगवान भी चलेगा कोई झाड़ है उसके भी आगे हाथ जोड़ेंगे और जो कुछ है वहाँ हाथ जोड़ने में तो उसको अच्छा लगता है, और वो आजकल तो मानते हैं ना, हम तो देखो हम सब सबको समान मानते हैं, सर्व धर्म समभाव, ये समभाव कहाँ है, राग भाव है ना जहाँ वहाँ तो नाक रगड़ रहा है बिना विवेक के, उनको ऐसा लगता है कि हम अन्य मतियों के द्वेषी हैं, ऐसा ही नहीं, द्वेष तो है ही नहीं ना।
मैं कुछ बोलूँ आपकी परमिशन से, आपने भी हम पर इल्जाम लगाया था आप लोग अटीर है,
मुझे जमाना हो गया फिर भी आप नहीं आप भूल गए, परंतु पहले ऐसा ही लगता है,
लेकिन आपने क्या किया,
आपका पुरुष
आई गुस्से में निर्णय के लिए आज से नहीं जाऊंगी फिर भी आई, फायदा किसका हो रहा है दिनेश भाई,
यानी आपके होनहार पे आप डटे रहे कि आप जानने की कोशिश क्यों ऐसा कहते हैं, हम जानकर रहेंगे तो फिर आपको फायदा हो उससे, अभी तो आपको कोई डिगा नहीं पाता है ना,
यानी आप मुझे ये बताना सामने वाला सुनने के लिए राजी होगा तो ही सुनाना, ऐसे तो सबको पहले सुनाना, लेकिन हम उसको पहले समझ लेना कि उसको कितनी रुचि है कितना इंटरेस्ट है फिर सुनाते जाते, इसके लिए मैंने एक निर्णय लिया जो यहाँ आएगा उसको सुनाएंगे, नहीं तो पहले अरे अभी भी पूछते हैं कि हमारे आएंगे और हम इतना पैसा देंगे आपको, अभी भी वक्त और आएंगे।
हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो जो दिन है अभी ये जो श्रावकाचार्य है ना अलग अलग समयों में लिखे हुए, यहाँ पर भी उसकी चर्चा की, कितने महापुराण से कुछ बातें ली है, कोई बाद में वो सोमदेव कोई हो गए उनके, तो हर समय जो सामाजिक स्थिति थी उसके अनुसार उसमें भी कुछ कथन बदलते गए, वो आगे भी उसकी चर्चा आएगी। तो यहाँ की बात नहीं है, अन्य विषयों के बारे में बता रहे, ये जो आठ क्रियाएं जैन धर्म में दीक्षित होने वालों के लिए बताई, कौन कौन से देखिए, अभी हमने अवतार, वृत्त लाभ, स्थान लाभ, गणग्रह, पूजा आराध्य, पुण्य यज्ञ, दृढ़चर्या और उपयोगिता, इनकी गणना दीक्षान्वय क्रियाओं में की जाती है। इसको कहेंगे दीक्षान्वय क्रिया। व्रतों का धारण करना दीक्षा है। उन व्रतों को ग्रहण करने के सम्मुख पुरुष की जो प्रवृत्ति है उसे दीक्षा कहते हैं, यानी उसकी इच्छा है, व्रतों के ग्रहण करने के सम्मुख जो प्रवृत्ति उसकी उठी, वृत्ति उठी, और उस दीक्षा से संबंध रखने वाली जो क्रियाएं हैं वे दीक्षान्वय क्रिया कहलाती है। उनमें पहली अवतार क्रिया है। जब मिथ्यात्व से दूषित कोई पुरुष समीचीन मार्ग को ग्रहण करना चाहता है, चाहने के बारे में वो स्वयं चाहता है, समीचीन ने यथार्थ सही सम्यक मार्ग को ग्रहण करना चाहता है, तब यह क्रिया की जाती है। किसी के ऊपर जबरदस्ती से उसको एक क्रिया नहीं करवाते, किसी को जबरदस्ती व्रत नहीं दिए जाते। प्रथम ही वह भव्य किसी मुनिराज या गृहस्थाचार्य के पास जाकर धर्म की जिज्ञासा करता है, धर्म जानने की उसको जिज्ञासा है, और उपदेश सुनकर मिथ्या मार्ग से प्रेम छोड़कर समीचीन मार्ग में बुद्धि लगाता है। रोज प्रवचन सुनने आता है, जब कोई पाठशाला चलती वहां जाता है तो उसको ये सुनने की रुचि हो गई है, अपना स्वरूप समझना चाहता है, सत्य धर्म समझना चाहता है। उस समय गुरु ही उसका पिता है और तत्वज्ञान ही संस्कार किया हुआ गर्भ है, यानी एज इफ वो गर्भ में आया हुआ बालक ऐसा कहते हैं, और गुरु उसके पिता है। ये तो दृष्टांत या रूपक बना के समझाया जाता है। वह भव्य पुरुष धर्म रूप जन्म के द्वारा तत्वज्ञान रूपी गर्भ में अवतीर्ण होता है, इसलिए इस क्रिया को पहली अवतार क्रिया कहते हैं। यानी वो जिज्ञासा हुई और धर्म सुनने जाता है, ऐसे वो गर्भ में आए। हाँ, अवतार इन्हें अभी धर्म धारण कर, अभी हमने वो भगवान का अवतार हुआ है, वैसे इसका अवतार यहाँ हुआ है। ये अन्यमति कहते हैं, हमारे में तो अवतार की बात नहीं है। ये अवतार तो नाम दिया,
भगवान का अवतार नहीं है,
वो भगवान का अवतार नहीं देते हैं।
अवतार का अर्थ जन्म,
अन्य भव में एक भव से दूसरे भव में जाना, उसको अवतार कहते हैं। उसी समय गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करते हुए और विधि पूर्वक व्रतों को धारण करते हुए उस पुरुष के वृत्त लाभ नामक दूसरी क्रिया होती है। वृत्त लाभ कहते हैं विधि पूर्वक, जो गुरु उसको वो व्रत बताएंगे वो अंगीकार करेगा। उसके बाद उपवास और पूजा पूर्वक स्थान लाभ नामक तीसरी क्रिया होती है। इसकी विधि इस प्रकार है। जिनालय में किसी पवित्र स्थान पर आठ पाखुड़ी का कमल बनावे अथवा गोलाकार समोसरण मंडल की रचना करें। अब ये अक्षतों से वगैरह की जाती है, अभी या रंगोली से, मुझे मालूम नहीं किससे बनावे। जब उसकी पूजा संपूर्ण हो चुके तब आचार्य उस पुरुष को जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सम्मुख बैठावे और बार बार उसके मस्तक का स्पर्श करते हुए कहे, यह तेरी श्रावक की दीक्षा है। ये श्रावक की दीक्षा की बात है, क्योंकि अभी देश व्रत यहाँ तो श्रावकाचार की बात नहीं, यहाँ व्रत का अंगीकार करना है, श्रावक के व्रतों का अंगीकार करना, इस अर्थ लेना है। पंचमुष्ठी की रीति से उसके मस्तक का स्पर्श करे तथा तू इस दीक्षा से पवित्र हुआ, इस प्रकार कहकर पूजा के बचे हुए शेष अक्षत उससे ग्रहण कराए। पश्चात यह मंत्र तुझे समस्त पापों से पवित्र करे, इस प्रकार कहते हुए उसे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश करे। यह तीसरी क्रिया है। उसके बाद यह स्थान क्रिया, स्थान लाभ। उसके बाद वह पुरुष अपने घर से मिथ्या देवताओं को निकालता है, यह चौथी गण ग्रह क्रिया है। फिर पूजा और उपवास पूर्वक द्वादशांग श्रुत की सुनना पांचवी पूजा आराध्य क्रिया है। श्रुतक को सुनना चाहिए ना, उपवास पूर्वक द्वादशांग फिर साधर्मी पुरुषों के साथ चौदह पूर्वों के अर्थ को सुनने वाले उस भव्य के पुण्य को बढ़ाने वाली पुण्य यज्ञ नामक छठी क्रिया होती है। इस प्रकार अपने मत के शास्त्रों को पूर्ण पढ़ लेने के बाद अन्य मत के शास्त्रों को अथवा किसी अन्य विषय को पढ़ने या सुनने वाले उस भव्य के दृढ़चर्या नाम की सातवीं क्रिया होती है। यानी अपने ये आगम का पूर्ण अभ्यास करने के बाद अन्य पढ़े, ये दृढ़चर्या यानी अपने में दृढ़ हो जाता है। इसके बाद उपयोगिता नामक आठवीं क्रिया होती है। इसमें पर्व के दिन रात्रि के समय में प्रतिमा योग धारण किया जाता है, यानी ध्यान लगाया जाता है। महापुराण में प्रतिपादित इन आठ क्रियाओं का ही कथन ग्रंथकार ने इस श्लोक में किया है। ये क्री दिख रहा है तो किया है। इन आठ के बाद उपनीति क्रिया होती है, जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है। इसका कथन आशाधर जी ने नहीं किया, उन्होंने वो जनेऊ की बात नहीं उठाई, बाकी वो महापुराण में वो होगी वहां पर। आगे कहते हैं, आचार आदि की शुद्धि पालने वाला शूद्र भी ब्राह्मण आदि की तरह यथा योग्य धर्म कर्म कर सकता है। आचार आदि की शुद्धि यानी वो मध्यमांस मधु का त्याग, जैसे हम नामधारी जैन कहते हैं, ऐसे वो आचार बराबर पाले तो कहते वो भी धर्म कर्म कर सकता है। ये 22 नंबर ने बताया। हाँ हाँ, 22 नंबर का ऊपर पढ़ेंगे हम। हाँ, शूद्रोप्युपस्कर आचार वपुशुद्ध्यास्तु तादृश जात्याहीनोपि कालादि लब्धौ ह्यात्मास्य धर्मभाग। आसन आदि उपकरण, मध्य आदि की विरति रूप आचार, शरीर की शुद्धि से विशिष्ट शूद्र भी जिन धर्म के सुनने के योग्य होता है, क्योंकि उनके आचार ऐसे नहीं, मांसाहार करते हैं, मध्यमांस पीते रहते हैं, तो उसके लिए उनको निषिद्ध माना गया। तो यदि वो आचार से बराबर स्नान आदि से शुद्ध होते हैं, शरीर की शुद्धि रखते हैं, तो कहते क्योंकि वर्ण से हीन भी, ये वर्ण से हीन का अर्थ क्या है, काला, हाँ शुद्र शुद्र, ये चार वर्ण की बात है। वर्ण से हीन भी आत्मा योग्य काल और देश आदि की प्राप्ति होने पर श्रावक धर्म का आराधक होता है। यानी वो भी जिन धर्म के सुनने के योग्य होता है, वह भी श्रावक धर्म का आराधक हो सकता है। विशेषण, यद्यपि दीक्षा के योग्य तीन ही वर्ण होते हैं, तथापि शूद्र को भी अपनी मर्यादा के अनुसार धर्म सेवन का अधिकार है, किंतु इसके लिए उसका निवास स्थान, उसका खान पान तथा शरीर शुद्ध होना आवश्यक है। आचार्य सोमदेव ने कहा है, आचार शुद्धि, घर बर्तन वगैरह की सफाई और शरीर शुद्धि शूद्र को भी देव, द्विज और तपस्वियों की सेवा के योग्य बनाती है। उन्होंने जिनमें पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, उन्हें सत शूद्र कहा है। यानी जिनमें वो स्त्री का पुनर्विवाह होता है, उसको तो निषिद्ध माना, वो तो मुनि तो उनके हाथ से आहार भी नहीं लेते, अपने अपने की बात है, अपनी बात है। और यहाँ तो यहाँ क्या लिखते हैं, जिनमें पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, जिनमें पुनर्विवाह की पद्धति है, जिन धर्म में कहेंगे, यानी जिन जिन कुलों में कहेंगे, वर्ण में कहेंगे, तो उनको तो आहार देने का अधिकार मुनि की सेवा वो कुछ नहीं है। तो कहते जिनमें पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, निषिद्ध है, ऐसे जो शूद्र है उनको सतशूद्र कहा है। सतशूद्र तो मुनि का आहार भी दे सकता है किंतु मुनिपद धारण नहीं कर सकता, किंतु श्रावक धर्म के पालन का उसे अधिकार प्राप्त है, यानी पांचवें गुणस्थान तक वो प्राप्त कर सकता है। महापुराण में कहा है जो दीक्षा के अयोग्य कुल में उत्पन्न हुए हैं और नाचना गाना आदि विद्या और शिल्प से आजीविका करते हैं, ऐसे पुरुषों को यज्ञोपवीत यानी वो जने आदि संस्कारों की आज्ञा नहीं है, किंतु ऐसे लोग अपनी योग्यता अनुसार व्रत धारण करे तो जीवन पर्यंत एक शाटक धारण करके व्रती रह सकते हैं। एक शाटक यानी क्या? अच्छा, क्रूरता न करना, सत्य बोलना, पराया धन न लेना, परिग्रह का परिमाण और निषिद्ध स्त्री में ब्रह्मचर्य का पालन, ये सर्वसाधारण का धर्म है, इसे सभी वर्ण वालों को पालना चाहिए। निषिद्ध स्त्री ने स्वस्त्री बिना अन्य स्त्री जो वेश्यागमन है, परस्त्री सेवन है, वो निषिद्ध स्त्री कहेंगे। आगे कहते हैं कि अध्ययन, पूजन और दान ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का समान धर्म है, किंतु यानी तीनों के लिए वो आवश्यक है। पढ़ाना, पूजन कराना और दान लेना ये ब्राह्मणों का ही मुख्य धर्म है। ये ब्राह्मण यानी वो आजकल के ब्राह्मण नजर के सामने मत लगा, ब्राह्मण यानी जो व्रती आदि है, पूजा आदि करवाने का कार्य करते, उसको लेना है। इसलिए विशेष रूप से उसका व्याख्यान करने के लिए आगे का कथन करते हुए पाक्षिक श्रावक को पूजन आदि करने की प्रेरणा करते हैं। ऊपर हम पढ़े, हाँ हाँ, ऐसे ही है, ये समय दृष्टि श्रावक की बात नहीं है ना, ऐसा कह रहे हैं, ये वर्ण की अपेक्षा बात बताए। यजेत देवं सेवेत गुरुं पात्राणि तर्पयेत कर्म धर्म्य यशस्यं च यथा लोकं सदा चरेत। श्रावक को नित्य जिनेन्द्र की पूजा करनी चाहिए, गुरुओं की सेवा नित्य ने डेली, गुरुओं की सेवा उपासना करनी चाहिए, पात्रों को दान देना चाहिए तथा धर्म और यश बढ़ाने वाले कार्य लोक रीति के अनुसार करने चाहिए। अब ये मनुस्मृति में लिखा है, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति तो अन्य मति का ग्रंथ है, वहाँ वो बात नहीं, वो दूसरे कुछ ब्राह्मण के लिए कुछ बताए हैं उन्होंने। देखो मनुस्मृति में पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना, ये छह कर्म ब्राह्मण के ही बताए हैं। उनमें से तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना क्षत्रिय और वैश्य के बताए हैं। तदनुसार महापुराण में भी भरत महाराज ने जो व्रती वर्ग के लिए ब्राह्मण नाम के चतुर्थ वर्ण की स्थापना की, उनके लिए पूजा, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम, तप ये षट कर्म बताए। अतः जो व्रती श्रावक है वह ब्राह्मण है और स्वाध्याय, संयम और तप के साथ पूजा करने, कराने तथा दान देने और लेने का अधिकार है।
सबसे पहला जो वाक्य है उसमें लिखा है धर्म है किंतु पढ़ाना, पूजन कराना और दान लेना ब्राह्मण, और यहाँ देना देना की बात है, वहाँ लेना था, यहाँ देना है।
यहाँ देने और लेने दोनों कर्म,
दोनों है
यहाँ लिखा है ना। जो व्रती श्रावक है वह ब्राह्मण है, स्वाध्याय, संयम और तप के साथ पूजा करने, कराने, दान देने, लेने का अधिकारी है। जो व्रती नहीं है वह पूजा करता है, दान देता है। दान लेने का पात्र तो वही है जिसमें मोक्ष के कारण गुण समय दर्शन आदि यथायोग्य विद्यमान है, उसे ही दान देना चाहिए। अन्य जीव उन्हीं को दान दे देंगे, क्योंकि हमने देखा ना पात्र जो होते हैं उत्तम मध्यम और जगन। तथा दया भाव से अपने आश्रितों का पालन करना चाहिए, यह आगे कहेंगे। यानी दया दान यानी अनुकंपा दान आदि भी बताते हैं। तथा जिससे संसार में यश भी हो ऐसे भी कार्य करना चाहिए, यानी लौकिक की बातें, जैसे स्कूल खोलना है, पाठशाला चलानी है, हॉस्पिटल खोलना ये आदि, गरीबों को मदद करना। च शब्द से अन्य कार्य भी लेना चाहिए, जैसे प्रातः काल उठकर शारीरिक शुद्धि करना, यह सब काम श्रावक को लोकानुसार करना चाहिए, यानी लोक पद्धति के अनुसार इसको भी करना चाहिए। आचार्य पद्मनंदी ने गृहस्थाश्रम की पूज्यता बतलाते हुए कहा है, जिस गृहस्थाश्रम में जिनेन्द्रों की पूजन की जाती है, निर्ग्रंथ गुरुओं की विनय की जाती है, धार्मिक पुरुषों के प्रति अत्यंत प्रीति रहती है, पात्रों को दान दिया जाता है, जो विपत्ति से ग्रस्त जन होते हैं उनकी करुणा भाव से मदद की जाती है। ये 23 नंबर कहाँ पढ़ा हमने? हाँ हाँ, ये देवम सेवेरी बोल, हाँ उसी की बात चल रही है। मदद की जाती है, तत्वों का अभ्यास किया जाता है, अपने व्रतों से अनुराग होता है, निर्मल सम्यक दर्शन होता है, वह गृहस्थाश्रम विद्वानों के द्वारा भी पूज्य होता है। इससे विपरीत गृहस्थाश्रम तो दुखदायक मोह पाश ही है। यानी जहाँ देव शास्त्र गुरु का कुछ विनय नहीं, सत्कार नहीं है, ना तत्वों का अभ्यास है, नहीं कुछ अभ्यास है, न कोई उसकी बातें होती है, तो कहते हैं वो तो दुखदायक मोहपाश है। आगे 18 पद्यों से जिन पूजा का विस्तार से कथन करते हैं, 24 नंबर। यथाशक्ति यजेतारह देवम नित्य महादिभि संकल्पतोपि तमयष्टा भेकवत स्वर्म हीयते। श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार नित्य मह आदि के द्वारा अरहंत देव की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने पहले देखा नित्य मह महामह वो सर्वतो भद्र वगैरह, उन्होंने पूजा के प्रकार बताए थे। क्योंकि मैं अरहंत देव की पूजा करूं, इस प्रकार के विचार मात्र से भी जिनेन्द्र देव का पूजक मेंढक की तरह स्वर्ग में महर्दिक देवों के द्वारा पूजा जाता है। ये आपको कथा मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? नहीं नहीं मालूम। देखो एक श्रावक था, हम कहेंगे शाम को रोज की तरह सामायिक में बैठता था, तो बैठ गया, उसने संकल्प किया, ये सामने वो वाती में दिया जलाया था, तो उसमें जब तक वो तो जल रहा है तब तक मैं करूंगा, फिर मैं उठूंगा और पानी पीऊंगा, ऐसे संकल्प करके बैठा था। उसकी शेठानी ने देखा कि आज बहुत अच्छी तरह से ध्यान में मग्न होकर वो सामायिक वगैरह कर रहे, तो आकर उसने उसमें घी डाल दिया, क्योंकि तेल ये दिया बुझने को आया तो उसने घी डाला। तो फिर वो उसने तो संकल्प ऐसा किया था, जब तक ये दिया जलता है तब तक मैं करूंगा करके, तो बार बार देखता रहे पानी पानी, क्योंकि उसको प्यास लगी थी और पानी पीना था, उसी में उसकी उसका मरण हो गया, मरकर वो मेंढक हो गया उसी घर की बावड़ी में। वो ये भी वो लंबी स्टोरी, वो बार बार आता था तो वो औरत को उसके पास चला जाता था, तो उसको समझना नहीं था ये मेंढक मेरी क्यों बार बार वो पैर के तरफ आता है, चढ़ता है, कुछ करता है। तो उसने पूछा भी था ना किसी अभिज्ञानी को, तो उन्होंने बोला था कि ये पूर्व होकर तेरा पति है और ये ऐसे ऐसा हुआ था, पानी पानी करके मरा और पानी में जाके जन्म हुआ। तो वहां महावीर स्वामी का समोचरण लगा, तो उसको भी पता चला ना, अभी संगी पंचेंद्रिय है, वो बातें तो जो कुछ चलती होगी, तो मुंह में कमल का फूल लेकर वो निकला, रस्ते से जा रहा था तो श्रेणिक राजा का हाथी भी आ रहा था, वो भी महावीर भगवान के समोचरण में जा रहा था, हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मर गया। परंतु उसके परिणाम क्या थे कि मैं भगवान महावीर को ये पुल चढ़ाओ, वहां जाने की इच्छा थी। मरकर वो देव होकर जन्मा और देव में जाते ही उसके अवधि ज्ञान से जाना और वो समोशरण में आ गया। तो ये बात है कि स्वर्ग में महर्दिक देवों के द्वारा भी वो पूजा जाता है। विशेषात रत्नग्रहण श्रावकाचार में चतुर्थ शिक्षा व्रत का नाम वैया वृत्त है। आचार्य समंत भद्र ने उसी में देव पूजा को भी रखा है और श्रावक को प्रतिदिन आदर पूर्वक देवाधिदेव जिनेन्द्र देव के चरणों की पूजा करने का उपदेश देते हुए कहा है, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा का महात्म्य तो राजगृही नगरी में आनंद से मत्त मेंढक ने एक फूल के द्वारा बतलाया था। अर्थात पूर्व जन्म का श्रेष्ठी जो माया बहुल होने से मरकर अपनी ही बावड़ी में मेंढक हुआ था, भगवान महावीर के समोशरण में जाते हुए राजा श्रेणिक के हाथी के पैर से कुचलकर मर गया। उस समय वह भी भगवान के दर्शनार्थ मुख में एक कमल का फूल लेकर जाता था। मरकर वह स्वर्ग में देव हुआ और अवधि ज्ञानी ज्ञान से अपने पूर्व वृत्तांत जानकर महावीर भगवान के समोशरण में उपस्थित हुआ। जब देव पूजा के विचार मात्र का इतना फल है, तब शरीर से जल चंदन आदि के द्वारा, वचनों से स्तवन के द्वारा पूजा करने का तो फल कहना ही क्या है। यानी मन से, वचन से, शरीर से पूजा करना चाहिए। मन से क्यों कहा? क्योंकि जो पूजा करते तो मन उसमें होना चाहिए, नहीं तो मुंह से बोल रहे हैं और मन भटक रहा है, उसकी बात क्या।
जिसको अभी के जमाने में 20-25 महीने, 20-25 जितने लोग हैं आज के तारीख में, तो ये फूल चंदन आदि से, फूल आदि से
नित्य मोह का स्वरूप कहते हैं। 25 नंबर, प्रोक्तो नित्यमहोन्वहं निजगृहान् नीतेन गन्धादिना पूजा चैत्यगृहे रहतस्वविभवात् चैत्यादि निर्मापणम् भक्त्या ग्रामगृहादिशासनविधा दानं त्रिसन्ध्याश्रया सेवा स्वेऽपि गृहेऽर्चनं च यमिनां नित्यप्रदानानुगम। देखो इसका अर्थ बताते हैं नीचे। नित्य मह का स्वरूप कहते हैं, प्रतिदिन अपने घर से लाए गए यानी अपने खर्चे से। ऐसा भी आगे लिखा है कि मंदिर से द्रव्य लेता है चढ़ाने के लिए, तो वहां पैसे दान देते हैं। प्रतिदिन अपने घर से लाए गए जल चंदन अक्षत आदि के द्वारा जिनालय में जिन भगवान की पूजा करना, अथवा अपने धन से जिन बिंब जिनालय आदि का बनवाना, इसको भी पूजा में लिया क्योंकि वो तो प्रतिदिन पूजा का एक निमित्त बनता है सबके लिए। अथवा भक्तिपूर्वक गांव मकान जमीन आदि शासन के विधान के अनुसार रजिस्ट्री आदि कराकर मंदिर के निमित्त देना, क्योंकि मंदिर को ये कोई आय हो जाती है, आमदनी होती है, उसके उसका जो खर्चा है, मेंटेनेंस है, वो तो चलता रहता है। इसके लिए पहले के जमाने में ऐसी पद्धति थी, जो दातार थे बड़े बड़े, वो कोई गांव है, कोई जमीन है, वो मंदिर के नाम करवा देते। अथवा अपने भी घर में तीनों संध्याओं को अरहंत देव की आराधना करना और मुनियों का प्रतिदिन पूजा पूर्वक आहार दान देना नित्य मह कहा है। विशेषार्थ मह का अर्थ पूजा है, नित्य पूजा करना नित्य मह है, उसके ही ये प्रकार है। इनका कथन महापुराण में किया है। प्रतिदिन अपने घर से पूजन की सामग्री ले जाकर मंदिर में पूजन करना नित्य पूजा है। इसमें इतनी विशेषता है कि पूजन की सामग्री अपने घर की होनी चाहिए। मंदिर की सामग्री से पूजा करना तभी उचित हो सकता है जब उसका मूल्य मंदिर को चुका दिया हो। प्रतिदिन पूजा करने वालों को यह याद रखने की बात है, इसमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ त्याग कर पूजा करने से सच्चा फल मिलता है। आगे जो बतलाए हैं वे सभी सब इसी पूजा में निमित्त होने से नित्य मह कहे गए हैं। जैसे अपने द्रव्य से जिनबिंब और जिनालय का निर्माण कराना, जहाँ मंदिर न होने से पूजा नहीं होती वहाँ मंदिर निर्माण पूर्वक जिनबिंब प्रतिष्ठा कराना उचित है, किंतु जहाँ जिन मंदिर है और नित्य पूजा की व्यवस्था नहीं है वहाँ जिन मंदिर बनवाना या नई मूर्तियां प्रतिष्ठित कराना धर्म की आसाधना है। आसाधना यानी समझ आसाधना है, यानी वहाँ कोई वहाँ पूजा करने वाले नहीं है या ऑलरेडी है बहुत, और नई नई और प्रतिष्ठा मूर्तियां बनाते चले जाते हैं, बहुत सारे मूर्तियां बनाते हैं जहाँ उनका प्रक्षाल भी नहीं हो पाता व्यवस्थित, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं, मेंटेन कैसे, जैसे प्रक्षाल भी होनी चाहिए और वहाँ कोई श्रावक भी होने चाहिए कि जो उनकी पूजन करे,
ऐसा हो मंदिर जहाँ श्रावक है वो सब है और कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो ना रहे और गांव में ऐसे कोई ना मिले कि जहाँ जेल में कोई श्रावक की ऐसा हो या कोई पूजा करने वाले या प्रक्षाल करने वाले, तो वो मंदिर का क्या होता है?
वो मंदिर का क्या करना उसकी बात नहीं है, परंतु ऐसे यानी जहाँ ऑलरेडी है वहाँ और नहीं बनवाना, जहाँ लोग तो बसे हैं और मंदिर नहीं है, जैसे अभी नए नए लोग शहर के दूर जाके बसते हैं और वहाँ मंदिर नहीं है, वो लोग तो नित्य पूजन करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह बनवाना चाहिए, छोटे गांव है मंदिर की क्या बात है, स्वाध्याय हॉल नहीं है तो वहाँ ये बनवाने चाहिए, जहाँ है वहीं पर बहुत ज्यादा बनाते हैं या एक की जगह बहुत सारी मूर्तियां बनवाते हैं तो ये असाधना होती, बस इतनी बात कहना चाहते। और ऐसा हो रहा है ना अभी,
आगे क्या होगा उसमें, तो क्या
आगे क्या कहाँ पर
होगा,
अच्छा हाँ
भावनगर
ब्राह्मण रखते, परंतु वो क्या है वो तो पद्धति बदलती हुआ अपने पद्धति की, कि पहले ऐसे भी बहुत गांव में ऐसा ही हुआ था कि जैनियों के एक दो मंदिर होते थे बाकी तो अजैनियों के हैं, और कोई व्यवस्था कर देता है एक ही पुजारी वहां पर भी बोलता है यहाँ पर भी, उसको पता नहीं कैसे करना क्या, तो वो जैसा मालूम है उसको वैसे ही करने जाता है, ऐसे तो अन्य अन्य प्रथाएं चालू होती है ना,
लेकिन उस पोजीशन में वो मंदिर को वहाँ से वहीं रखना है, वहाँ से हम जहाँ ज्यादा
मंदिर कैसे हटाएंगे, नहीं नहीं तो बड़े बड़े मूर्तियां प्राचीन मूर्तियां वही वो बहुत अभी कितने थोड़े कितने गांव ऐसे कि इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, दो चार घर रहेगी अभी वहाँ पर अभी क्या है उसको कोई तो एक्वायर करेगा, ऐसे होते हैं ना अन्य मतियों ने कितने ही एक्वायर किए, साउथ में कितने अपने जैनियों के मंदिर तो वहाँ शिवलिंग ये वो बाकी सब तो
के लिए मंदिर ही नहीं बनाना ऐसा मत सोचना, आगे क्या होगा क्या होगा उसके लिए वो थोड़ी जिम्मेवार है, अब ऐसा है ना छोटे छोटे गांव में पहले लोग बसते थे मंदिर बनते थे, अभी से भी लोग शहर में
अभी क्या आजीविका के लिए शहर की ओर गए हैं,
पहले बम्बई में मंदिर था वो आगे जाते दादर में बना, दादर जाके घाटकोपर में बना,
मलाड में बना,
आगे आगे और कहीं कहीं कांतिवली और क्या क्या
भाईंदर में बहुत सारे बने, अभी जहाँ लोग बसते हैं वहाँ तो बनाएंगे,
आगे क्या होना है, लेकिन यहाँ ये कह रहे कि जहाँ व्यवस्था नहीं है व्यवस्था करा दे, और आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को लगाते हैं, तो मैं तो कहूँगा शादी करनी है तो जैन पद्धति से करनी चाहिए, अभी तो ब्राह्मण मिलता नहीं है तो मिलेगा उसे शादी करा, तो शादी ही नहीं पक्की है जैन पद्धति से हो वो शादी है, देखो आएगी बात ये श्राव का जल है,
यहाँ तो जो है अभी जैन भी है ना, कोई ब्राह्मण मिलता है तो जैन नहीं मिलता है क्या? ऐसा नहीं कहते, जैसे कोई गरीब है, गरीब कोई वहाँ रखना है, उसकी व्यवस्था करना है, उसको कुछ धन देना है, जैसे ब्राह्मण को रख सकते हैं, वैसे कोई जैनी को भी रख सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो अभी वो कहाँ गए थे, द्रोणगिरी में, तो ऐसा यानी उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, डेली रूटीन पूजा कैसे करनी, कैसे रखना क्या है, वो मंत्र आदि सिखाए जाते हैं, पूजा पाठ सिखाए जाते हैं, और ऐसे उन लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जिसको जरूरत है वो वहाँ से बोल सकते हैं, उनको मंगवा सकते हैं।
इस समय तो ऐसा बताया ना, आपको याद होगा, आप देखना पंडित जी आप आए हैं दोनों, और जाके वसंत भाई दूसरे को बताना कि ये बच्चे कैसे तैयार हो गए, इनके थ्रू वो चल रहे हैं, क्या है कुंभ
कहान की तरफ से वो सब चलाते हैं, अच्छा चल रहा है वो
मुंबई वाले,
और ये द्रोणगिरी के ये अभी जो बना उससे कुछ संबंध नहीं है, वो दूसरे मंदिर है ना वहाँ चलता है।
अभी क्या है, एक साथ 50-50 100-100 शादियाँ होती है, वो एक ब्राह्मण एक जो जैन हो पूरे समय बदलता है, ये सब गड़बड़ी चालू है।
सामाजिक जो कुछ चेंजेस परिवर्तन होता है उसके अनुसार ये तो चेंजेस तो होने वाले हैं, परंतु बेसिक तो हमें तो मूल बात धर्म संबंधी चाहिए, तत्वज्ञान संबंधी चाहिए, ये ऐसी कुछ सभी में ऐसे नियम को एक हम बता नहीं सकते।
आचार विचारों में अधिक उलझने से तो तत्वों की बैठक बराबर हो जाए,
ये मुख्य है, समय दर्शन पूर्वक ये बातें आगे की ये व्रतों की बात होती है, परंतु मूल में सात तत्वों का सही श्रद्धा ने देवगुरु शास्त्र का निर्णय वो तो बेसिक है, और उसमें क्या है, बीच बीच में अन्य मतियों के भी जो कोई मनुस्मृति या लौकिक जो है नीति जो है उसकी भी चर्चा बहुत की। हाँ अभी आगे ये है, जहाँ मंदिर जिन मंदिर है और जिनते पूजा की व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था ही नहीं तो जिन मंदिर बनवाने से क्या लाभ है ना, तो वहाँ जिन मंदिर बनवाना या नई मूर्तियां प्रतिष्ठित कराना धर्म की असाधना है। पूजन के निमित्त मंदिर के नाम जायदाद वगैरह की लिखा पढ़ी करके देना भी नित्य महर है, क्योंकि उसकी आमदनी नित्य पूजा में व्यय होने वाली है। मंदिर के सिवाय अपने घर पर भी प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल को सामायिक आदि करना भी नित्य महर है, यानी उसमें भी देव की स्तुति आदि सब बोला जाता है सामायिक पाठ में, तो वो भी नित्यम है। प्रतिदिन मुनियों को अपने घर पर पड़गाह कर जो पूजा की जाती है, जिसके बाद उन्हें आहार दान दिया जाता है, वह भी नित्यम है, यानी रेगुलर उनको अष्ट द्रव्यों से पूजा की जाती है और बाद में उनका आहार दान किया जाता है, वो भी नित्यम में आती है, ये सब नित्यम के ही प्रकार है। अब अष्टानिक और इंद्रध्वज ने इंद्र के द्वारा वो इंद्र शब्द से ऐन्द्र शब्द बना लक्षण कहते हैं, ये हमने अलग अलग पद्धति की पूजा के प्रकार बताए थे उसकी बात है। ये 26 नंबर का ऊपर पढ़ेंगे, जिनार्चा क्रियते भैरवी या नंदीश्वर पर्वणि अष्टान्निको सौ सेन्द्राद्य साध्या त्वइंद्र ध्वजो मह सा इंद्राद्य ही इंद्रों के द्वारा भव्य जीवों के द्वारा नंदीश्वर पर्व में अर्थात प्रतिवर्ष आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन के श्वेत पक्ष के अष्टमी आदि 8 दिनों में, शुक्ल पक्ष लिख दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि हिंदी वाले कहेंगे अंत 8 दिन माए, अंत के 8 दिन, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष को अंतिम पूर्णमासी को मंथ एंड कहते हैं, और जैसे उनका चैत्र उनकी चैत्र कृष्ण पक्ष जो कहेंगे चैत्र कृष्ण, तो हम क्या कहेंगे उसको, उनका जब चैत्र कृष्ण चलता है उनका चैत्र कृष्ण फाल्गुन हमारे फाल्गुन कृष्ण में आता है हिंदी वालों में, क्योंकि हमारा फाल्गुन चल रहा है ना, तो उनका फाल्गुन कब समाप्त हुआ, पूर्णिमा, फिर उनका चैत्र शुरू हुआ, तब चैत्र कृष्ण हुआ, फिर चैत्र शुक्ल हुआ, जब उनका वैशाख कृष्ण आया तो हमारा चैत्र कृष्ण आया। एक महीने का डिफरेंस होता है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल दोनों के समान है, एक महीने शुक्ल दोनों का समान है। हमारा जो कृष्ण पक्ष है अभी कौन सा चल रहा है,
अभी
श्रावण कृष्ण वदी, तो उनका क्या चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण चल रहा है, ये बात है। इसलिए उन्होंने लिख दिया श्वेत पक्ष शुक्ल पक्ष, अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों में जो पूजन किया जाता है, जिन पूजा की जाती है वह अष्टानिक मह है, तथा इंद्र प्रति इंद्र सामानिक आदि के द्वारा, ये जो देव जो है जो जिन पूजा की जाती है उसे इंद्र ध्वज मह कहते हैं। वो ध्वजा आदि चढ़ाते हैं, बहुत बड़ी पूजा करते तो उसको इंद्र ध्वज पूजन कहते हैं। अब महामह का स्वरूप कहते हैं 27 नवंबर उप भक्त्या मुकुट बद्धैर्या जिन पूजा विधीयते तदाख्या सर्वतो भद्र चतुर्मुख महामहा। इसके 2-3 नाम बता रहे, मंडलेश्वर राजाओं के द्वारा मुकुटबद्ध कहा ना, भक्ति पूर्वक जो जिन पूजा की जाती है उसके नाम यानी उस पूजा के नाम सर्वतो भद्र चतुर्मुख और महामह है। हाँ मुकुट बद्ध ने देखो यानी उसके हाथ के नीचे सामंत आदि होते हैं ना, वो मुकुट बद्ध। देखो आगे लिखा है विशेषार्थ, जिनको सामंत आदि के द्वारा मुकुट बांधे गए हैं उन्हें मुकुट बद्ध या मंडलेश्वर कहते हैं। अभी ऐसे भी आता है कौन उसकी किसको क्या कहना, चक्रवर्ती किसको कहना हो, ये किसको कहना हो, किसके किस राजा के हाथ के नीचे कितने राजा है उसके अनुसार उसके अलग अलग नाम भी आते हैं। वे जब भक्तिवश जिनदेव की पूजन करते हैं तो उस पूजा को सर्वतो भद्र आदि कहते हैं। वह पूजा सभी प्राणियों को कल्याण करने वाली होती है इसलिए उसे सर्वतो भद्र कहते हैं। चतुर्मुख मंडप में की जाती है इसलिए चतुर्मुख कहते हैं, बड़ा मंडप करके उसमें वो पूजा बनाई, और अष्टानिक की अपेक्षा महान होने से महामह कहते हैं। यदि मंडलेश्वर चक्रवर्ती आदि के भय से यह पूजा करता है तब उसकी यह गरिमा समाप्त हो जाती है, इसलिए भक्तिवश कहा है। यह पूजा भी आगे कही जाने वाली कल्प वृक्ष पूजा के तुल्य ही होती है। अंतर इतना है कि वो 2 बार की हुई। कल्पवृक्ष पूजा में चक्रवर्ती अपने साम्राज्य भर में दान करता है और इस पूजा में मंडलेश्वर केवल अपने जनपद में दान करता है, उसके अपनी जो सीमा है उसमें दान करके वो पूजा करता है। आगे कल्पवृक्ष पूजा का स्वरूप कहते हैं, ये एक पढ़ लेते हैं। किभिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्यय चक्रिभिः क्रियते सौरहद्य यज्ञ कल्पद्रुमो मतः। क्या चाहते हो इस प्रकार के प्रश्न पूर्वक याचक की इच्छा के अनुरूप दान के द्वारा, इसको कहते किमिच्छिक दान, यानी जो सामने वाला इच्छा करता है वो उसको दे देना दान के, इसके द्वारा लोगों के मनोरथों को पूरा करके चक्रवर्ती के द्वारा जो जिन पूजा की जाती है उसे कल्पद्रुम कहते हैं, यानी कल्पवृक्ष के सरह वो सबकी मनोकामना पूरा करता है। इसलिए अब यहीं रुकेंगे हम।
जान के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।